श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की, श्री श्री राधावन बिहारी जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव में आप सबका स्वागत है। साल में केवल एक ही बार इस समय कथा होती है ना? और साल में जब इस समय कथा होती है तो अधिकतर लोग बहुत थके रहते हैं, लेकिन थकना मना है क्योंकि आज जन्माष्टमी है और 12 बजे तक आपको जगे रहना है, उत्साहपूर्वक जगे रहना है। और जिस किसी को नींद आए उसको खड़े रहना है, क्योंकि आप सब लोग भी सो जाएंगे तो मैं तो सो नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो बोलना है। इसलिए आपको विनती है कि मैं भी जगा रहूं, इसलिए आप भी जगे रहिए। हरे कृष्णा। तो सवेरे हमने विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में, भगवान के आविर्भाव के विषय में चर्चा की, और भगवान के जन्म की कहानी आप सब लोग जानते ही है। भारतवर्ष का ये भाग्य है कि भारतवर्ष में जन्म लिया हुआ बच्चा बिना पढ़े भगवान की सारी कथाएं जानता है। हमने भी बचपन में कभी हरे कृष्णा आंदोलन में आने के पहले ना रामायण पढ़ा, ना महाभारत पढ़ा, ना कृष्ण की कहानियां पढ़ी, लेकिन हमको सब कुछ कहानियां बचपन से ही याद हैं। का कारण क्या है कि हम लोग बचपन में हर समय जब भी उत्सव हुआ करता था तो रामलीलाएं नाटिकाएं हमेशा देखते रहते थे, कांस्टेंट, कभी मिस नहीं किया हमने। 10 दिन रामनवमी के समय, क्या कहते, दशहरा के समय, रामनवमी के समय, दीपावली के समय, नवरात्रि के समय, कभी भी हमने ये नाटिकाएं मिस नहीं की। भी हरे कृष्णा आंदोलन में आने के बाद में फिर ये ठीक से पढ़ाई करना आरंभ किया, लेकिन कहानियां सब बचपन से ही पता है। ये भारत भूमि में जन्म लेने का एक परम भाग्य है कि ये भूमि जो है, यही एक भूमि है पूरे पृथ्वी पर जहां पर भगवान के कई अवतारों ने जन्म लिया, कई अवतार प्रकट हुए। ऐसा कोई भूमि है क्या? एक अरब देश में और एक पश्चिम जगत में एक एक संत पैदा हुए, उसके अलावा जितने भी संत हुए हैं, जितनी भी भाषा में संत हुए हैं, जितने प्रकार के संत हुए हैं, वो सब भारत भूमि में हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? तो ये भूमि बड़ी पावन भूमि है। इसमें भगवान के सारे अवतारों ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, और इस भूमि में जन्म लेने के लिए ऐसा कहा गया है कि पिछले जन्मों के कई जन्मों के पुण्य आवश्यक हैं, जिसके फल स्वरूप भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और ये इतने जन्मों के पुण्य के बाद में भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि वो पुण्य का फल के स्वरूप इस भूमि में जन्म लेकर हम सब लोग भगवान की भक्ति में प्रगति करें, भगवान के प्रेम और भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम चले जाएं। फिर दोबारा और पुण्य कर्म करके और कहीं जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल भारत भूमि में जन्म होने पर काम समाप्त नहीं होता है, जैसे दीक्षा लेने पर काम समाप्त नहीं होता है, काम शुरू होता है, इनिशिएशन, उसी तरह से भारत भूमि में जन्म लेने के बाद में वास्तविक कार्य शुरू होता है। तो ऐसा हमारा परम भाग्य है। इस भारतवर्ष में कहते हैं कि मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन, ये पहले हुआ नहीं करता था। इसका कारण क्या है, किसी को पता है? कोई डॉक्टर है इसके अंदर? क्या कारण है बताइए। भारतवर्ष में मानसिक तनाव अधिकतर नहीं होता था, अभी हो रहा है, अभी एडवांसमेंट है ना, अभी कलयुग का, तो उसमें हो रहा है, पहले नहीं होता था। कारण क्या है उसका? हाँ, जो हो गए भगवान देख लेंगे, राम भरोसे हिंदू होटल, प्रॉब्लम नहीं। आध्यात्मिकता अभी नहीं है। उसका सही उत्तर यह है कि भारतवर्ष में एक के बाद उत्सव चलते रहते हैं, बीच में गैप होता ही नहीं है, और उत्सव के समय कोई मेंटल डिप्रेशन में नहीं आ सकता है, है ना? इतने सारे आनंद का कार्य हो रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई सज धज के आ रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई झूला झूला रहे हैं, कोई प्रसाद पा रहे हैं, हाँ, सब हंसते हुए चेहरे हैं, इतना आनंद हो रहा है। एक समाप्त होते ही दूसरा की तैयारी चालू हो जाती है। अभी देखिए जन्माष्टमी हो गई तो क्या आएगा, गणेश जयंती, उसके पहले राधाष्टमी आएगी, उसके बाद तुरंत गणेश जयंती आएगी, नहीं, गणेश जयंती पहले राधाष्टमी बाद में आएगी, उसके बाद तुरंत नवरात्रि आएगी, उसके बाद दशहरा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तुलसी विवाह, उसके बाद ओणम षष्ठी आएगी, गिनते जाओ आप। एक ही राज्य में लगातार उत्सव चलते रहते हैं, तो जो व्यक्ति उत्सव की तैयारी में बिजी रहता है उसको मानसिक तनाव कैसे होगा? मानसिक तनाव तब होता है जब उत्सव नहीं होते हैं, तब व्यक्ति बोर हो जाता है, अकेला हो जाता है, क्या करे समझ में नहीं आता है उसको। तो ये परम भाग्य हमारा जो है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा परम भाग्य है। आज के दिन में यहां पर मानसिक तनाव वाला व्यक्ति भी आएगा ना, तो भी नॉर्मल हो जाएगा, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, नॉर्मल हो जाएगा जब तक यहां पर है तब तक, क्योंकि भारत के वातावरण में उत्सव प्रियता है। अभी आज आप वृंदावन जाएंगे ना, ये भी वृंदावन ही है, मथुरा के वृंदावन में जाएंगे तो पूरा वृंदावन जो है ना वो ऐसे आनंद से भरा रहता है, जन्माष्टमी के समय, झूलन यात्रा के समय, होली के समय, सावन भादो के महीने के समय, पूरा वातावरण ऐसे आनंद में रहता है, किसी के मन में दुख नहीं रहता है, सब लोग खुश रहते हैं, ऐसा विदेश में हम नहीं देखते हैं। सब लोग बंद कमरे में हैं, जाना भी है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और नहीं बिना पूछे जाएंगे, लिखा है कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो वो कल्चर में मानसिक तनाव होगा ही होगा, जिसमें हमारे घर में क्या लिखता है, हम लोग सब जगह गांव में सुस्वागतम, और विदेश में क्या लगता है, कुत्तों से सावधान। तो ये हमको समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा भाग्य हमारे पर आता है ना, तो हम लोग फिर उसको ज्यादा कीमत देते नहीं है। वे रोज लड्डू खाता है, मिठाई खाता है, तो उसको मिठाई की क्या कीमत हो सकती है? वैसे रोज अगर सद्भाग्य सद्भाग्य और अहोभाग्य मिलते रहेंगे तो भाग्य की भी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति रोज अहोभाग्य प्राप्त होने पर भी भाग्य की कीमत कम नहीं करता, उसका मूल्य कम नहीं करता, वो मूल्य की जानकारी और ज्ञान बनाए रखता है, वो बुद्धि का लक्षण है। ऐसे हमारा जन्माष्टमी का महोत्सव है, सबको पता है कहानी, बच्चे बच्चे जानते हैं, एक नहीं अनंत कहानी जानते हैं भगवान की, फिर भी हम उसको जन्माष्टमी के दिन बार बार दोहराते हैं, क्योंकि वह नित्य नवायमान नव यौवन संपन्न कथा है भगवान की, उसको अनंत बार सुनेंगे तो भी आपको कभी बोर नहीं होगा। तो ऐसे नव नवायमान भगवान का आज आविर्भाव दिवस है। कवि कर्णापुर उनको कहते हैं वो अदृष्ट है। अदृष्ट क्यों है? उनको हम रोज देखते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन आज के घड़ी में जो उनका सौंदर्य है वो कल नहीं था, आज का सौंदर्य नया है। ये भगवान की विशेषता है, भगवान का सौंदर्य कभी कल जैसा नहीं होता है, पिछले क्षण जैसा भी नहीं होता है, हर क्षण नवीन 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 सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये कला केवल भगवान के बीच में, इसलिए कवि कर्णापुर उनको अदृष्ट कहते हैं, ये उनकी पदवी है अदृष्ट। दूसरी पदवी है अनपरुत, जिसका जिसके सौंदर्य का अपहरण अभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि वो सौंदर्य नया है, उसके बारे में वर्णन अभी होना बाकी है, इसलिए अनअपरुत, जिसका अपहरण नहीं हुआ है, ऐसे सौंदर्य वाले भगवान है वो। अनपहत, जिसका वर्णन अब तक किया नहीं गया है, ऐसे कई भगवान की उपाधियां हैं, अनंत गुण है भगवान के। तो सवेरे हमने जो कहानी बताई थी तो उसमें जब आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिसका तू रथ हाँक रहा है उसके आठवें गर्भ के संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, तो तत्क्षण तलवार निकाला उसने, तत्क्षण वसुदेव ने हाथ पकड़ा उसका। अभी देखिए, वसुदेव ने बहुत समझाया उसको, बताया कि आप कीर्तिमान हो, आप वीर हो, आप दिग्विजयी राजा हो, युवराज हो, आपकी ख्याति है बल, आपके बलवान होने की, आप महावीर हो, आपने महावीरों को चितपट कर दिया है, हजारों हाथियों का बल आपके पास में है, तो उससे आप अबला का वध करोगे? वो अबला भी आपकी बहन है, और वो भी जिसकी शादी हुई आज। तीन कारण बताए, एक तो अबला है, दूसरी आपकी बहन है, तीसरी नवविवाहिता है, आपकी ख्याति में हानि पहुंचेगी, आपकी बदनामी होगी, कुख्याति होगी, फिर भी उसको फिलोसफी अंदर नहीं घुस रही है उसके। क्यों नहीं घुस रही है? जिसके मन में क्रोध और द्वेष का आवेश हो चुका है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर वो क्या कहते हैं, हम आने वाले हर एक बालक को आपको सुपुर्द करेंगे, और आपको भय तो आठवीं संतान से है, तो चिंता की बात नहीं है, आठवीं क्यों, पहले से ही आपको सुपुर्द करते रहूंगा। और यह बात कंस के समझ में आई, हाँ ये बात पते की बात है। अभी विश्वास कैसे करेंगे इस बात पर, बोल तो रहा है अभी, सा क्या कहते हैं ना, घटना को टालने के लिए, प्रसंग के आपत्ति को टालने के लिए तो बोल देगा वो, हाँ कर देंगे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना, भेज देंगे आपके पास। इतना मूर्ख कंस नहीं था, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वसुदेव आजीवन उसके जन्म से ही सत्यवचनी थे, सद्गुण संपन्न थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ सद्गुण था उनका सत्य वचन, दिए हुए वचन को शब्द को पालन करना। और ऐसे नहीं कि वो इस समय कंस को पटाने के लिए उसने ये सत्य वचन ही होना पहले से ही तैयारी करके रखा था, आगे जाकर कंस का ऐसा प्रसंग आए तो मैं उसको समझा दूंगा इसके बारे में, नहीं, वो स्वाभाविकता ही नॉर्मली वो सत्यवचनी थे, और स्वभाव से ही सत्यवचनी होने की वजह से पूरे विश्व में उसकी ख्याति थी कि वसुदेव मतलब सत्यवचनी। इतने सत्यवचनी थे वो कि कंस जैसे राक्षसी पापी दुष्ट व्यक्ति को भी ये पता था कि ये सत्यवचनी है। हाँ, संत लोग, अच्छे लोग, सभ्यजन तो जानते ही थे, लेकिन एक पापी दुष्ट भी वसुदेव के सत्यवचनी होने को मानता था कि यह सत्यवचनी है। इसलिए हमको इसमें क्या सीख मिलती है कि सद्गुण जो है ना वो स्वभावता ही उसको परवरिश करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि प्रसंग आएगा, दुखद घटना होगी या कोई चैलेंज होगा, चुनौती होगी, तब देखेंगे क्या करना है, नहीं, स्वभाव से ही मनुष्य को आजीवन सद्गुणों को संपन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए। पता नहीं कब उसका उपयोग होगा, कौन सा बाका प्रसंग आएगा और हमारे पहले के सद्गुण जो है जिसके बारे में हम जाने जाते हैं कब वो काम आएंगे। तो वसुदेव जी उसका उदाहरण है। इतना भयंकर प्रसंग था, बिचारी की नई नई शादी हुई है, दुल्हन साथ में है, और हजारों हाथियों के बल वाला बहू का भाई तलवार लेके उसके गर्दन काटने को खड़ा है, और वो इतना बलशाली है कि स्वयं वीर पुरुष होने पर भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंस महाराज थे। ऐसे प्रसंग में सद्गुण काम आया, आया कि नहीं आया? इतने बाके प्रसंग में शादी के ही दिन बीवी की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो बच गई क्योंकि वसुदेव सद्गुण संपन्न थे, सत्यवचनी थे। तो इसलिए हम सब आपको विनती करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? ये नहीं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र करना है, चार नियम पालन करना है, अच्छा है वो तो करना ही चाहिए सबको, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और चार नियम का पालन करके, सत्संग करके, प्रसाद पाके, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करके, सत्संग करके, धाम में यात्रा करके क्या हासिल करना है? सद्गुणों को हासिल करना है, वैष्णवों के सद्गुणों को हासिल करना है। इसको कहते हैं कल्चर ऑफ भक्ति, भक्ति की संस्कृति है वो। अगर 64 माला जप कर रहे हैं, सारे नियम पालन कर रहे हैं, सारे व्रत कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने की आदत है, लोगों को चीट करने की आदत है, फंसाने की आदत है, चोरी करने की आदत है, दिया हुआ शब्द वाचन पालन न करने की आदत है, शब्द देना ही इसलिए तोड़ने के लिए है ना, ऐसे किसी किसी की आदत होती है, लोगों के साथ में मन मिलाव से नहीं रहना है, हमेशा वाद विवाद संघर्ष में रहना है, कोऑपरेशन नहीं करना है, ये भक्ति नहीं। हमारे गुरुदेव बताते हैं, समझो एक व्यक्ति ऐसा है कि वो बहुत अपने नियम में पक्का है एकदम, 16 माला, सुबह उठना, जप करना, पढ़ना, सत्संग करना, यात्रा में जाना, एकदम पक्का है वो, लेकिन उसके अंदर सद्गुण नहीं है, मिलनसार स्वभाव नहीं है, झगड़ालू स्वभाव है, हट्टी स्वभाव है, झूठ बोलने का स्वभाव है, किसी से पैसे लिए तो वापस देने का गुण नहीं है उसके अंदर, तो एक व्यक्ति ये हो गया। दूसरा व्यक्ति ये है कि वो भक्त वक्त नहीं है, लेकिन सत्य बोलने वाला है, मिलनसार स्वभाव स्वभाव का है, हाँ कोऑपरेशन करने वाला है, मददगार है, सहायता करने वाला है, दूसरा व्यक्ति हो गया। ये दोनों व्यक्ति में से आपका आपको एक चुनना है, तो गुरुदेव बताते हैं कि जो भक्त नहीं है लेकिन सद्गुण वाला है उसको चुनना चाहिए, क्योंकि सद्गुण वाला व्यक्ति जो होता है उसको आगे जाकर भक्त बनाया जा सकता है, लेकिन जो भक्त बन चुका है और दुर्गुण संपन्न है उसको सद्गुण संपन्न करना मुश्किल है। और भक्ति की व्याख्या यह है कि सद्गुणों को ग्रहण करना, सद्गुणों को आत्मसात करना, कि अल्टीमेटली ये जो नम्रता, सहनशीलता, आदर पूर्णता, खुद के लिए आदर की अपेक्षा नहीं करना, सबको सहयोग करना, प्रेम से रहना, मददगार बनकर रहना, मिलनसार बनकर रहना, ये भगवान को आकर्षित करता है। और इन्हीं सद्गुणों के भूमि पर भक्ति का पौधा बहुत जल्दी परवरिश प्राप्त करता है। तो ये वसुदेव का उदाहरण बहुत ही प्रेरणादायक है। दूसरी बात, वसुदेव के व्यक्तिमत में हम देखते हैं कि वसुदेव और देवकी को क्या सेवा मिलने वाली है, ये उनको पहले किसी ने बताया नहीं था। शादी हो रही है, शादी सबकी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है, शादी बहुत लोगों की होती है, बारात निकलती है, बहुत सारा आनंद होता है, गीत गाते नाचते लोग, लेकिन शादी के बारात में जब आनंद का वातावरण है, सब लोग गीत गा रहे हैं, श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, तब आकाशवाणी भयंकर आकाशवाणी होती है कंस के लिए, और एकदम बाका प्रसंग निर्माण होता है, सब गाना बिना बंद हो जाता है, श्लोक वोक सब बंद, वाद्य बंद, एकदम टेंशन उत्पन्न होता है। और आकाशवाणी क्या कहती है कि इस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, इतना ही इंफॉर्मेशन वसुदेव देवकी को मिल रहा है। इज इट नॉट ट्रू? पहले किसी ने बताया था क्या? नहीं। लेकिन उसी केवल आकाशवाणी के दो चार वाक्यों के अनुसार समझते हुए देवकी वसुदेव ने पूरी सेवा स्वीकार कर ली। उसका प्रमाण क्या है? पहले बालक का वध हुआ, फिर भी बालकों को जन्म देना छोड़ नहीं दिया उन्होंने। कोई व्यक्ति होता तो कहता कि अरे चलो बालकों को मारने वाला है तो बालकों को उत्पन्न ही नहीं करते, खत्म होगी बात, बुद्धिमानी की बात है, आप बोलेंगे बहुत बुद्धिमान हो आप। आठवें संतान के द्वारा वध होने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सभी संतानों का वध करते जाएगा, तो बेस्ट यह है कि किसी को जन्म ही ना दे, लेकिन ये जन्म देते रहे, कोई इन्होंने प्रचार नहीं किया किसी ने आके उनको, देखो वसुदेव देवकी, देखो आपके गर्भ में भगवान आने वाले हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, बीच में जो साथ आएंगे ना उनका वध किया जाएगा। आप निरुत्साह मत होना, आप बच्चों को जन्म देते रहना, आठवें जन्म के रूप में भगवान आने वाले हैं, निश्चिंत रहो आप। कोई बताने को नहीं आया, क्योंकि जेल में कौन आएगा बताने के लिए। लेकिन आप उनके दृढ़ निश्चय पर विचार कीजिए, एक के बाद अपने आंखों के सामने अपने बालकों को छिन्न विच्छिन्न करके मृत्यु दंड दिया जा रहा है। एक माता के लिए कितना कष्टदायी चीज है वो। लेकिन एक आकाशवाणी के सुनने से भगवान के आने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए कितने दृढ़ निश्चय थे वो। इतने प्रतिकूल और कष्टमय घटना में भी उनका निश्चय कभी हिला नहीं, इसलिए वो श्रेष्ठ भक्त हैं। दे आर एग्जेम्पलरी डिवोटीज। क्योंकि इतने देखो कैसा ना, हम लोग अभी अनुकूल स्थिति है, मन भी अच्छा है, झगड़ा भी नहीं घर पे हुआ है और सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब लोग दिन रात जन्माष्टमी में काम कर रहे हैं। लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, चार पांच दिन नींद नहीं हुई है और घर में अभी कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, फिर भी व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो विशेष बात है। वो प्रतिकूल वातावरण में भी निश्चय पूर्वक नियम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहना, ये विशेष बात है। तो देवकी वसुदेव ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की सेवा किया, भगवान को आने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया, खुद के लिए अनंत कष्ट सहन किए उन्होंने, लेकिन भगवान का आठवें गर्भ के रूप में जन्म होने वाला है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको चाल देने के लिए उन्होंने इतने समय तक कष्ट उपभोग किया। ये उनकी और एक विशेष बात है। और भगवान को अपना पुत्र प्राप्त करने के लिए सुतपा और प्रश्निक के रूप में उन्होंने 12,000 साल तपस्या किया था, केवल पेड़ से गिरने वाले पत्तों को ग्रहण करते हुए। ऐसा नहीं कुटू के लड्डू खा रहे हैं, साबुदाना खिचड़ी खा रहे हैं, दूध पाक खा रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। हाँ, इतनी कठोर तपस्या किया उन्होंने। और जब वरदान मांगने का समय आया, भगवान प्रकट हो गए, तो क्या बोला? ऐसा नहीं बोला कि हमको मुक्ति दे दे, जन्म मृत्यु से मुक्त करके आपके वैकुंठ धाम में। सेवा मांगी, सेवा क्या बोले? आप हमारे पुत्र बनकर आओ, हम माता पिता बनकर आपकी सेवा करेंगे, लालन पालन करेंगे। तो भगवान के भक्त जो है ना, भगवान का दर्शन प्राप्त होने के बाद भी खुद के लिए कोई वरदान नहीं मांगते, भगवान की सेवा के लिए वरदान मांगते हैं। प्रहलाद को भी भगवान ने दर्शन दिया था और भगवान जिद कर रहे थे, मांगो मांगो मांगो, वो कह रहे थे भगवान मुझे मांगने के लिए मजबूर मत करना, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं किसी व्यापार की भावना से, लेन देन की भावना से आपके लिए भक्ति नहीं किया था मैंने। फिर भी भगवान जिद करते हैं, तो भी भगवान जिद कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, कि भाई वरदान मांगेंगे तो इनको संतुष्टि होगी, इसलिए वो वरदान मांगते हैं, वो भी खुद के लिए नहीं, कहते मेरे पिताजी को मुक्त करो। ये भक्त है। अभी आगे जाकर एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म होने के पहले की घटनाएं, कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम नंद बाबा, यहां के वसुदेव देवकी, वहां के नंद यशोदा, नंद के पिताजी का नाम परजन्य, और परजन्य महाराज को वो देवमीड राजा के पुत्र थे, देवमीड राजा के वैश्य पत्नी के पुत्र थे वो, और नंदगांव में रहते थे, नंदगांव उनकी तपस्या भूमि है। लेकिन आगे जाकर केशी नाम के राक्षस का वहां पर आतंक प्रारंभ हुआ, इसलिए वो नंदगांव छोड़कर महावन में सेटल हो गए और वहां पर राज्य करने लगे। यथावकाश उनके बच्चे जो थे, 5 बच्चे 5 पुत्र, एक से बढ़कर एक देवता गुण, देवताओं के गुण संपन्न, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन, 5 भाई थे। तो जब यो जवान हो गए तो उन्होंने उपनंद को विशेष राज तिलक किया, राज मुकुट पहनाया, और अपने, ऐसे नहीं कि बहुत बुढ़े हो चुके थे, लेकिन अपने मध्यम अवस्था में ही वन में जाकर तप करने का विचार किया उन्होंने, इतने बड़े ऐश्वर्य संपन्न राज्य को छोड़ने का विचार किया। जैसे ही उपनंद बाबा को उन्होंने तिलक किया, उपनंद ने क्या किया, वही तिलक जाकर तुरंत नंद को लगाया और पिताजी को कहा कि मुझसे अधिक गुण संपन्न नंद है, उसी को राजा होना चाहिए। नंद ने कहा, नहीं, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, ये आपका अधिकार है, आप ही उसके लिए योग्य हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जो चाहे कहूंगा, जो चाहे करूंगा आपके लिए। फिर भी उपनंद जो है कहते हैं, मेरी ये इच्छा है, अगर मैं जो चाह वो आप करना चाहते हो तो मेरी इच्छा ये है कि आप राजा बनो और मैं मंत्री बनूंगा और आपकी सलाह आपको सलाह दूंगा। तो इस बात को अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये राज्यभार स्वीकार किया, खुद राजा बने। लेकिन आजीवन उपनंद महाराज के सलाह को पालन करते करते उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो ये परजन्य महाराज जो है, जब आखिरी बार ये अपने पुत्रों का एक दूसरे पर को प्रेम देखते हैं, कैसा प्रेम है, देखो आजकल तारीख में अगर कोई राजा बनता है तो अपने छोटे भाई को उसका राज्य देगा क्या? वो उल्टा इतिहास ऐसा है कि जिसका अधिकार नहीं है वो अधिकार नहीं होने वाले व्यक्ति को मारकर राजा बनता है, ऐसा इतिहास है हमारे। कितने ऐसे वंश हैं दुनिया में, म्लेच्छ और यवन लोगों के, जिसमें अधिकार न होते हुए भी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का वध करके दूसरा व्यक्ति राजा बना है और उसका भी उसके पुत्र ने वध करके वो राजा बना है। इस तरह से परंपरा चलती आ रही है। और यहां पर कैसा हो रहा है, जिसको राज्यपद नहीं मिला है उसको राज्यपद, जिसको मिला है वो दे रहे हैं और जिसको मिल रहा है वो सेवा के भाव में स्वीकार कर रहा है और उन्हीं के उपदेश के ऊपर अपना आगे का कार्य कर रहा है। तो ये सब लीला जो है अपने पुत्रों के बीच में जो प्रेम की लीलाएं हैं वो परजन्य महाराज देख रहे हैं और प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर अभी जा रहे हैं कि मेरा राज्य जो है वो सही हाथों में है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जाने के समय पुत्र कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं उनको। क्या पूछ रहे हैं? कि इस दुनिया में भय कैसे उत्पन्न होता है? तो परजन्य महाराज कहते हैं, भय जो है वो कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कर्म बुरे होते हैं तो भय उत्पन्न होता है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आश्रय क्या है इस दुनिया में? तो परजन्य महाराज बताते हैं कि भगवान का और भगवान के भक्तों का आश्रय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर प्रश्न पूछते हैं बालक कि सबसे मूल्यवान भेंट कौन सी है दुनिया में? व्हाट इज द मोस्ट चेरिशेबल गिफ्ट इन लाइफ? तो परजन्य महाराज, सब लोग एकदम ध्यान से सुनिए, ये कृष्ण के पिताजी बोल रहे हैं। परम भक्त थे, ऐसे सद्गुणों के सागर थे वो, ऐसे वर्णन आता है उनका गोपाल चंपू में। तो वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे मूल्यवान भेंट है भगवान के भक्त और उनका संग। फिर वो पूछते हैं कि वास्तव में सच्चा आनंद किसमें है? तो परजन्य महाराज आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मनुष्य जीवन में वास्तविक आनंद केवल कृष्ण को प्रेम करने में है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और ऐसा उपदेश करके परजन्य महाराज वन में तप करने के लिए विरक्त होकर चले जाते हैं और आगे नंद महाराज राज्य करते हैं। इतना सुंदर इतिहास है हमारा, हमको अभी अभी 200-300 साल के पहले का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब गलत जो नहीं करना चाहिए वो आपको 300 साल के पहले इतिहास में दिखाई पड़ेगा। थोड़ा 5000 पहले जाइए आप साल, और इस प्रकार का आदान प्रदान जो आदर्श जो है वो चरित्र आज हमको पढ़ना चाहिए आज के जमाने में, ताकि हमको कुछ प्रेरणा मिले कि ऐसे भी लोग हुआ करते थे और ऐसा कार्य करते थे, अपना हक जो दूसरों को दिया करते थे और बड़े ऋणी भाव से सहयोग करते हुए जीवन चलाते थे भगवत प्रेम में आवृत्त होकर। फिर जब भगवान का जन्म हुआ तो पृथ्वी बड़ी आनंदित हो गई, जैसे कोई नव वधु अपने होने वाले पति को मिलने जा रही है, या कोई वधु जो पहले विवाह कर चुकी है बहुत दिनों बाद पति को मिलने जा रही है, ऐसा आचार्य वर्णन करते हैं। लेकिन पृथ्वी को प्रफुल्लित होने का एक और कारण था, वो ये है कि पृथ्वी माँ जानती थी कि भगवान जब अभी जब आएंगे तो बिना कोई पादत्राण पहने हुए नंगे पैर मुझ पर चलेंगे और उनके चरण चिन्ह मुझ पे, मेरे छाती पर उनके चरण चिन्ह आएंगे, उन चिन्हों पर दिव्य चिन्ह भी होंगे, शंख चक्र पद्म गदा अंकुश, वेदी इस प्रकार के कई चरण चिन्ह उनके चरण चिन्ह में होंगे, चिन्ह होंगे, और वो जो चरण चिन्ह है वो मेरे ऊपर परमानेंट एक अलंकार के रूप में विराजमान रहेंगे। तो जिनके चरण चिन्ह को प्राप्त करने के लिए, चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए सारे संतगण, सारे देवतागण, सारे देवऋषि व्याकुल रहते हैं, वो अनायासी मेरे छाती पर चलेंगे, मुझे धन्य करेंगे। इसलिए पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई और छह के छह ऋतु एक ही साथ अपने पूरे सौंदर्य ऐश्वर्य के साथ प्रकट हो गए। ऐसा कभी होता है क्या? एक साथ में एक ही ऋतु आता है और जितना हो सके अपना सौंदर्य प्रकट करता है। लेकिन भगवान के आने के समय और भगवान जब जितने समय थे उतना समय ब्रज में सारे छह ऋतु अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। केवल भगवान को और भगवान के भक्तों को आनंद मिले, भगवान की प्रेम लीला संपन्न हो और जनमात्र, सामान्य जनमात्र को कृपा प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से वो छह ऋतु पूरे सहयोग से एक दूसरे को एडजस्ट करते थे और भगवान के आनंद के लिए आज क्या आवश्यक है वो बेस्ट सिचुएशन वहां पैदा करते थे। कितनी सुंदर बात है। देखो आप, ये छह ऋतु व्यक्ति हैं और ऋतु बनकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लीला के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करते हैं। अभी जब रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, वो मथुरा में थी, और जब रोहिणी गर्भवती होती है तो उसको सातवें महीने में वसुदेव नंदगांव भेज देते हैं। तो गर्भवती रोहिणी जो है, जिसके गर्भ में बलराम जी हैं, वो अभी छुपके से नंदगांव पहुंचती है और नंद महाराज उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। यथावकाश बलराम जी का जन्म होता है, तो कृष्ण का जन्म होने के पहले ही रोहिणी जो उनकी पत्नी नहीं है, उनके दोस्त की पत्नी है, और उनके दोस्त वसुदेव जो है अपनी दूसरी पत्नी के साथ जेल में पड़े हुए हैं, वहां आतंक का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी पत्नी उनके जिम्मेदारी में दी गई है और उसको बच्चा पुत्र पैदा होता है, तो बड़े धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाते हैं बलराम जी का। व्यास देव जी आते हैं, बालक का गुणगान करते हैं, बहुत सुंदर उत्सव मनाते हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण का जन्म होता है यशोदा के गोद में, है ना। तो नंद महाराज का चरित्र आप देखिए कितना सुंदर चरित्र है। वो सबसे पहले अपने पत्नी के पहले अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में रोहिणी को अलंकार और वस्त्र प्रदान करते हैं और वो वस्त्र रोहिणी तुरंत धारण करती है। अभी देखिए, जिसका पति साथ में नहीं होता है वो कभी अलंकार धारण नहीं करती, सादगी में रहती है, ज्यादा पब्लिक में प्रवेश नहीं करती है, उत्सवों में या सामाजिक कार्यक्रम में एकांत में रहती है। जब तक पति नहीं आते हैं तब तक श्रृंगार नहीं करती है, ऊंचे वस्त्र नहीं पहनती, अलंकार नहीं पहनती। हमारी संस्कृति है ये, कोई स्त्रियों को दबाने के लिए कोई संस्कृति नहीं बनाई गई है, ये प्रेम से स्त्रियां अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए कार्य करती है। जो नहीं है तभी ये ऐसे रहती है। लेकिन जब पति जेल में है और संकट को भोग रहे हैं, और यहां पर जो व्यक्ति पति के मित्र हैं, पत्नी पति मिलकर मेरी सहायता कर रहे हैं, उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो वो उनको वस्त्र और अलंकार दान करते हैं। और जो पति से वियोग में है उसको उत्साह देने के लिए नंद महाराज क्या बोलते हैं, हे रोहिणी माता, आप है हमारे पास इसलिए मुझे कृष्ण जैसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है आपके उपस्थिति की वजह से। और बहुत उनका गुणगान करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, और फिर उनके उत्साह देने की वजह से रोहिणी सुंदर वस्त्र पहनकर जैसे मानो उसका ही पुत्र हुआ है इस प्रकार से जन्म उत्सव में भाग लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो व्यक्ति हमारे आश्रय में है, किसी दुख के कारण हमारे आश्रय में है या हमारे आश्रय में है और दुख में है, तो उसको उत्साहजनक वातावरण देना, उसको प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। ये एक श्रेष्ठ और सुसंस्कृत प्रगत व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने आश्रय में आए हुए व्यक्ति को हमेशा उत्साहजनक व्यवहार और शब्द प्रयोग करेगा उसके लिए। वहां पर आगे जाकर देखते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ और नंदोत्सव मनाया जा रहा था, तो सभी देवता जो आकाश में पहले लंबा लंबा या मान होकर लटक रहे थे, वो पृथ्वी पर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आए, ब्रजवासी बनकर आए, सिंपल सा भेष पहनकर आए। और नंद महाराज जो है ना वो अपने एक एक भंडार लुटा रहे थे, इतना लुटाया इतना लुटाया इतना लुटाया कि कुछ बाकी नहीं बचा। फिर भी उनके सामने पर्याप्त संपत्ति थी, केवल अलंकार नहीं उन्होंने बांटे, हाथी बांटे, घोड़े बांटे, हाँ बैल बांटे, गाय बांटे, जो भी जितने भी उनके साथ जानवर थे वो भी उनको भी दान दिया उन्होंने। तो कहते हैं कि सारे देवता वहां पर आए थे, शंकर जी भी आए थे और पार्वती भी जी आए थे। तो पार्वती जी आई थी तो गणेश जी को लेकर आई थी, तो क्या करती है पता है आपको, गणेश जी मतलब हाथी है ना, वो हाथी का सर वाले हैं, तो उसको गोद में लेकर खड़ी रहती है, ऐसा ना हो कि हाथियों को बांटा जा रहा है, मेरे बच्चे को भी बांट देंगे, किसी को दान में दे देंगे, है ना। इतने हाथी यहां से वहां हो रहे इस क्या कहते हैं प्राणी संग्रहालय, प्राणी गौशाला कह सकते हैं, प्राणीशाला कह सकते हैं, वहां से बांटे जा रहे हैं, तो बीच में हमारा बालक भी दिखाई पड़ेगा, वो ऐसे ही खेलते खेलते तो उसको भी दान देंगे किसी को, इसलिए गोद में लेके खड़े उसको। और शंकर भगवान नंदी में बैठकर आए हैं ना, नंदी बैठकर, तो नंदी की पूंछ पकड़ के खड़े हैं, क्यों, गाय के साथ बैल का भी दान हो रहा है, और मैं छोड़ दूंगा तो इसको भी दान कर देंगे, वो चला जाएगा किसी के हाथ में। ऐसे देवताओं ने भी नंदगांव में आकर नंद भगवान नंद महाराज के हाथों से दान स्वीकार किया, कृष्ण भगवान का दर्शन करने के हेतु आए थे वो। और नंद महाराज और यशोदा माई देख रहे थे कि हमारे पूरे राज्य में ये सब लोग नए हैं, ये कुछ मुझे पहचान में नहीं आ रहे, वो नंदगांव के वासी नहीं है। आज ऐसा होता है क्या, राजा को पता है कि हमारे देश में कौन कौन रहता है, किसके किसी पास आधार कार्ड है और हमारा देश का नागरिक है, सबको पहचानते हैं राजा, नहीं पहचान सकते। लेकिन नंद महाराज ऐसे थे कि अपने राज्य में कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष और कितने बालक जी रहे हैं, यहां तक कि कितने जानवर है, हरेक गाय का भी नाम से पहचानते थे। भगवान भी अपने हरेक गाय हरेक बछड़े को, बच्चिया बछड़े, गाय बैल भैंस बकरियां घोड़े हाथी सबको नाम से जानते थे। और जितने ब्रजवासी थे स्त्री पुरुष भाई बहन सबको नाम से पहचानते थे। तो ये विशेष बात है, उनको समझ में आता है कि हमारे राज्य के नहीं है, लेकिन नंदोत्सव में इतना आनंद हो रहा है, इतने लोग प्रकट हो रहे हैं, तो उनको पूछ नहीं पा रहे कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे पूछेंगे, मुझे आपके घर में शादी चल रही है। तो आजकल में ऐसा एक लोग ट्रिक करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो सूट वूट पहन के अच्छी साड़ी पहन के आ जाते हैं शादी में, और ये लोग पूछेंगे आप कौन हो, तो बोले उस साइड से, वो लोग पूछेंगे आप कौन, तो बोले इस साइड से, लड़के वालों से आते हैं, फिश खाते हैं, चले जाते हैं एकदम धूमधाम से। तो आप उनको पूछ नहीं सकते आपके आप कौन हो, आपका कार्ड दिखाओ, मैं भी कंफर्म करता हूं पहले किसके तरफ से आए हो, फिर आपको लंच मिलेगा। शादी में ऐसा नहीं होता है, आनंद का प्रसंग है, बहुत भोजन किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो कोई 10 लोग एक्स्ट्रा खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। सची माता का भी ऐसा ही हुआ था, सारे देवतागण नवद्वीप में आए थे, सची माता देख रही थी कि ये मेरे पहचान के नहीं है, बहुत तेज वाले लोग हैं, बहुत बहुत तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी, लेकिन पूछे कैसे कि आप कौन हो। उनको भी दान दिया जा रहा है, वो भी दान ले रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। यही प्रसंग कौशल्या का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ था तभी भी हुआ था, क्योंकि देवता लोग जो है ना वो पृथ्वी पर क्यों आते हैं भगवान का जन्म देखने के बाद में, होने के बाद में, क्योंकि गौलोक वृंदावन में अयोध्या वैकुंठ में भगवान का बाल स्वरूप नहीं होता, वहां पर 16 वर्ष का नवयौवन संपूर्ण शरीर होता है। दोनों राधा कृष्ण सीताराम 16 वर्ष के आयु में अपने दिव्य धाम में रहते हैं। तो बाल स्वरूप का दर्शन तब होता है जब यही भगवान अपना दिव्य धाम दिव्य वैकुंठ छोड़कर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो बाल स्वरूप में रेंगते हैं, हाँ क्रॉलिंग, तोतले तोतले बोल बोलना, हाथ पकड़ के चलने को सीखना, बोलने को सीखना, ये सब लीलाएं खाली यहां पर आके करते हैं। भगवान के धाम में युद्ध नहीं होता है किसी का, लेकिन भगवान को जब युद्ध करने की इच्छा पैदा होती है तो अपने कुछ भक्तों को नीचे भेजते हैं राक्षस बनाकर, और फिर रियल में उनके साथ युद्ध करते हैं दिलो जान से एकदम खूंखार। ऐसा होता ना, लुटू पुटी का युद्ध नहीं खेलते हैं, फ्रेंडशिप का युद्ध नहीं खेलते हैं, रियल युद्ध खेलते हैं नीचे आकर। तो भक्त ही होते हैं उनके सब लोग। रावण भी उनका भक्त था, कंस भी उनका भक्त था ओरिजिनली। रोल अदा कर रहे हैं वो दुश्मन का, ताकि भगवान को पूरी तरह से वीर रस का आनंद प्राप्त हो। तो इस तरह से अभी वो देवताओं की बात चली रही है, तो एक बात कथा आपको बता देते हैं। तो शंकर भगवान तो बालक रूप में दूर से आए थे नंदी को लेकर, उसके बाद में प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए एक बार आए, जब ये लोग गोकुल रावल से ट्रांसफर हो चुके थे नंदगांव में। तो कहते गोकुल में भी आए थे वो, तभी भी सेम लीला हुई थी, और बाद में नंदगांव में भी आए थे तभी भी सेम लीला हुई थी, लेकिन नाम अलग है। वहां पर आशेश्वर महादेव नंदगांव में और गोकुल में चिंताहरण महादेव, लेकिन लीला सेम, दोनों जगह उनका आसन निश्चित है। तो हुआ ये कि शंकर भगवान ऋषि का रूप धारण करके नंद भवन में प्रवेश करते हैं और मैया से कहते हैं भवती भिक्षान देही। तो यशोदा मैया क्या करती है, एक थाली में पूरे रत्न मोती लेकर आती है, कुछ चावल अनाज कुछ भोजन का सामान लेके आती है, और बड़े इत्मीनान से साधु के सामने खड़ी रहती है। तो साधु कहते हैं हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले क्या भिक्षा चाहिए फिर आपको, हमें आपके लाला के दर्शन चाहिए। तो उसके मन में घंटी बजती है, अरे सब साधु आते हैं अन्न धान्य और अलंकार लेके चले जाते हैं, ये साधु कह रहा है कि नहीं चाहिए, लाला के दर्शन चाहिए, हो सकता है ये राक्षस हो। अभी तक तो कोई सुंदर स्त्री बनकर आई लक्ष्मी जैसी, कोई हवा बनकर आया, कोई गाड़ी बनकर आया, हाँ क्या क्या नहीं बनकर आए, इतना सारा बनकर आए, कभी बगला बनकर आया, कभी घोड़ा बनकर आया, अभी ऋषि बनकर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं आपको दर्शन दूंगी, आप सब लोग कंस के दूत हो, इतना सारा भयंकर रूप लेके आए, अभी साधु बनकर आए हो, मैं कतई तुम पर आपको दर्शन नहीं दूंगी, चले जाओ यहां से, ये लेना है तो ले लो ये तो चले जाओ, ऐसा करके दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दी थी। अभी शंकर भगवान स्वयं कैलाश से आए हैं दर्शन की अभिलाषा लेकर, भगवान के बाल रूप का दर्शन हो जाए। हाँ बाल रूप कैसा होता है, अगर कुरूप से कुरूप माता पिता हैं समझो, उनका कुरूपोत्तम बालक का जन्म होता है, फिर भी जो कुरूपोत्तम बालक जब बालक होता है तो बड़ा आकर्षक होता है, होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। काला कलूटा बालक भी होता है तो भी जब बालक होता है तो उसकी जो लीलाएं होती ना तो बड़े आकर्षित करती है, अच्छे अच्छे लोगों को मन आकर्षित कर देती है, वो बाल काल ही ऐसा होता है। और ये तो परम सौंदर्यवान ऐश्वर्य संपन्न भगवान जन्म ले रहे हैं, और वो जब बालक बनकर आ रहे तो कितने सुंदर होंगे वो, तो दर्शन करने के देवता लोग आ रहे हैं, तो भी नाराज होकर शिव जी वापस जाते हैं और पास ही के वन में बैठते हैं और रोने लगते हैं, रो रो कर पुकारने लगते हैं भगवान को, रो रो कर पुकारते हैं, बहुत 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 रोते हैं। भगवान नन्हे से बालक है उस समय, अभी जानते हैं ना भगवान तो बालक होने से क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो भगवान ही होते हैं, चाहे बालक स्वरूप में हो गोद में हो, बोल नहीं पा रहे हो चल नहीं पा रहे हो, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ही होते हैं। तो जानते हैं कि मेरे परम भक्त जो है रो रहे वहां पर बैठकर। तो बालक के पास में कौन सा अस्त्र होता है सबसे बड़ा, माताओं को पता है, सबसे पावरफुल अस्त्र जो माता पिताओं को तत्क्षण परास्त कर देता है, ऐसा कौन सा अस्त्र है बालक के पास, अरे बोलो ना, रोना, लगता है थक गए सब लोग बेचारे, अभी बोल ही नहीं पा रहे। तो कृष्ण भगवान रोना आरंभ करते हैं, तो तुरंत एक खिलौना देते हैं उसको कान के पास, उसको निकाल के फेंक देते हैं, दूसरा खिलौना देते हैं, स्तन पान करने लगाते हैं वो भी छोड़ देते हैं, जितना भी उपाय करते हैं उतना अधिक रोने लगते हैं। जो रोज का उपाय है 1 2 3 4 5 सब उपाय कर लेते हैं, फिर भी बालक जो है एक एक उपाय करने के बाद में और अधिक रोने लगता है, फिर क्या होता है, फिर माता जो है वो बहुत दुखी हो जाती है। देखिए क्या है ना, आप डॉक्टर होंगे लेकिन आपको जब बालक होता है और बालक जब रोता है डॉक्टर भी बेकार हो जाता है पूरा, बालक के रोने के सामने कौन सा डॉक्टर होता है, माता पिता डॉक्टर होने दोनों डॉक्टर है, जब बालक रात को रोता है दोनों पागल हो जाते हैं, क्या कर रहे क्या अभी इसको, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाई इज ही क्राइंग। तो वैसे यशोदा मैया पूरी भ्रमित हो जाती है, अभी क्या करें क्या करें, पूरे सब सखियां आ जाती है, नंदगांव के सारी ब्रजवासिनी गोपियां आ जाती है, अरे लाला रो रहा है क्या करूं, ये दिया वो दिया स्तनपान दिया। अभी देखो जब बालक कभी स्तनपान नहीं करता है ना और रोता है ना तो बहुत चिंता का कारण है, बालक जब स्तनपान नहीं करता है माता का, मतलब वो बहुत संकट में है, एक वेरी इंपॉर्टेंट साइन। तो डॉक्टर पहले क्या पूछते हैं, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है क्या? नहीं नहीं स्तनपान नहीं कर रहा है। सारे गोपियां आके चिंता कर रही है, बालक रोते जा रहा है, यशोदा माई रो रही है, उतने में पूर्णमासी आती है। पूर्णमासी कौन है? शंकर जी की पत्नी है वो, पार्वती देवी। वो ब्रजलीला में गोपियों के गुरु बनकर, ब्रजवासिनी गोपी बनकर आती है, सांदीपनी की माँ बनकर आती है, सांदीपनी की माँ है वो। तो वो कहती है, अरे तुमको पता नहीं है, तुमने जिस साधु को भगाया ना, बड़ी दूर से आया, बड़ा तपस्वी है, जब से तुमने भगा दिया तब से वहीं बैठकर रो रहा है। हो सकता है वो बड़े सिद्ध बाबा हैं वो, हो सकता है उसी की कृपा से बालक रोना बंद कर दे। तो फिर जिस व्यक्ति को राक्षस होने के भय के वजह से यशोदा मैया ने भगा दिया था, उसी व्यक्ति के द्वारा मेरा बालक रोना बंद करेगा, इसलिए उसी को बुलावा भेजते हैं। सब गोपियों को मिठाई विठाई आरती का सामान लेकर उनको विनती करने भेजते हैं और कहते हैं, महाराज जी आइए, आप आपको बुलावा भेजा है यशोदा मैया ने, आप नंद भवन में आ जाइए, हमारा बालक रो रहा है। तो बड़े भाग के शिवजी महाराज नंद भवन पहुंचते हैं। और इस बार जिस व्यक्ति को दर्शन देने के लिए मैया ने मना किया था, डांट फटकार के भगा दिया था, उसके सामने नम्र होकर बालक को प्रस्तुत कर रही है। बालक जोर से रो रहा है और जोर से रो रहा है। जैसे ही शंकर भगवान जो ऋषि बने हुए हैं उस बालक के चरण को स्पर्श करते हैं, तुरंत बालक रोना बंद कर देते। तो मैया क्या बोलते, अरे बड़े अद्भुत बाबा है, हाथ लगाते रोना बंद। तो कहते बाबा अभी आप जाना नहीं, इधर ही रहना, आगे जब भी बालक रोएगा तो आ जाना, जब जब मेरा लाला रोए तब तक दर्शन दीजिए। अभी देखिए जिसको ठुकरा दिया था, डांट फटकार करके भगा दिया था, उसी को विनती करके रहने की विनती कर रहे हैं कि आप रह जाओ, मैं आपको भोजन दूंगी, इसको भोग लगाऊंगी पहले आपको दूंगी, इसका अभिषेक करूंगी तो आपके सर पे उसका जल डालूंगी, आप यहीं रहो। और शंकर महाराज कुछ कम नहीं है, शंकर महाराज क्या बने कृष्ण के लिए बताइए? खिलौना बने, खिलौना। जब बालक रोता है तो जब भी आप कुछ उसको देते हो वो बालक रोना बंद कर देता है, वो क्या होता है? खिलौना होता है। वो खिलौना देने के बाद में बालक रोना बंद कर देता है। तो शंकर देव तो महादेव है, ब्रह्मा उनके पिताजी, फिर भी उसको वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे महादेव शंकर भगवान जो है परम भगवान श्री कृष्ण के लिए एक खिलौना बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आज भी वहीं बैठे हुए नंदीश्वर बनकर। और जब भी भगवान रोते हैं मैया उनको बुला लेती है, तो ठाकुर जी को वो रिझा लेते हैं। हाँ, तो देवता की बात निकली थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। अभी एक सुबह और एक विशेष बात हमने कही थी कि वो ये है कि छह पुत्रों को आंखों के सामने वध करने के बाद भी कंस को देवकी ने माफ कर दिया, ये मुमकिन हो सकता है क्या? सामान्य जीव को मुमकिन है ये? आपके छह बालकों को जन्म होते ही किसी व्यक्ति ने, एक ही व्यक्ति ने बार बार आकर शिला पर पटक कर छिन्न छिन्न विच्छिन्न करके वध कर दिया है, उस व्यक्ति को आप माफ कर सकते हो क्या? माता तो छोड़ ही दो, पिता भी नहीं माफ कर सकता। लेकिन हम पढ़ते हैं कि देवकी ने तुरंत माफ कर दिया उसको, जैसे देवी आकाश में चली गई और चेतावनी दे दी देवी ने, हे मूर्ख कंस, तुम्हें मरने वाला तो पैदा हो गया है, कहीं और पल रहा है वो, बेकार में वसुदेव देवकी को कष्ट देना बंद कर दो। तो एकदम डर गया कंस, अभी तो क्या करें हम, तो पैर में पड़कर रोने लगा, देवकी के पैर पकड़कर रोने लगा और बड़ा बड़ा सिद्धांत सुनाने लगा कि मुझे माफ कर देना, मैं कठपुतली हूं। और देवकी तुरंत माफ कर देती है। तो आचार्य गण ये देवकी कैसे माफ कर सकी इसका रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि देवकी कंस को माफ करने के कुछ ही समय पहले भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुकी थी। इतना समय कष्ट प्राप्त करने के बाद, सातवां गर्भ गर्भपात होने के बाद, आठवें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और कारागृह में दिव्य सारे पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण विरक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ऐश्वर्य उनका प्रदर्शन किया उन्होंने। और अपने मधुर वाणी में, सम्मोहिनी भाषण वाणी में माता को प्रसन्न किया, आश्वस्त किया। तब भगवान का दर्शन करके देवकी मैया को इतना आनंद हुआ था, इतना हर्ष उल्लास हुआ था, कि पुराना जो परिणाम था दुख का वो सब खत्म हो गया। जितना हृदय में घाव थे ना, एक बालक का वध हुआ, दूसरे बालक का वध हुआ, तीसरे का हुआ, चौथे का हुआ, पांचवे का हुआ, छठवे का भी हुआ, ऊपर सातवें बालक का गर्भपात भी हो गया, यानी बलराम का संकर्षण किया गया, उसको लगा कि गर्भपात हो गया। सात बच्चों के प्रति वो दुख भोग चुकी थी, तो कितना हृदय पर उसका असर होगा। लेकिन भगवान का दर्शन करके सारे सात बालकों का प्रति जो दुख था वो सब नष्ट हो गया। दुख केवल नष्ट नहीं हुआ, अति आनंद का सागर उमड़ पड़ा उसके हृदय में। दुख का परिणाम भी, लवलेश भी याद भी नहीं रही उसको। इसका मतलब पूरी तरह से वो कृष्ण भावना भावित हो गई। हम क्या बोलते हैं, पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस हो गई, कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त करके। इसीलिए उस आनंद के प्रभाव से उसे कंस को क्षमा करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। तो आचार्य क्या बताते हैं, जब कृष्ण का हमारे मन में आविर्भाव होता है और हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो क्षमाशीलता बड़े स्वाभाविक तरह से हमारे अंदर आ जाती है। जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, दूसरों को क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। जन्म जन्मांतर तक कोई कोई लोग किसी को माफ नहीं करते हैं, करेंगे ही नहीं। लेकिन माफी जब तक हम नहीं करते हैं, तो खुद भी गौलोक में जा सकते नहीं। अगर हमें गौलोक धाम में जाना है, तो क्षमा करने की कला हमको आनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमें क्षमा प्राप्त हो जाएगी। हम अगर क्षमा करने के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी, फिर हम गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कितना भी मेहनत करो, तपस्या करो, व्रत करो, 128 माला जप करो, कुछ नहीं होगा। और क्षमाशीलता अगर चाहिए तो वो खुद से शुरुआत करनी है उसकी। ऐसे नहीं कि पहले आप माफ करो फिर मैं आपको माफ करूंगा, ये हमारा दुनिया का तरीका होता है। लेकिन दिव्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल एसोसिएशन में पहले हम माफ करते हैं और फिर माफी की अपेक्षा करते हैं। पहले देते हैं फिर लेने की अपेक्षा करते हैं। इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। जब हम किसी को माफी देते हैं तो माफी प्राप्त होती है, और माफी देना आसान तब होता है जब हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं। यह हम देवकी के उदाहरण से यहां पर समझ सकते हैं। अभी हमने सुबेरे पूतना का वर्णन भी सुना कि पूतना बड़ी सज धज कर सुंदर युवती बनकर एक हाथ में कमल लेकर जा रही है गोकुल की ओर। और बड़े आश्चर्य होगा आपको, सुखदेव जी जो हैं बड़े चाव से कई श्लोकों में पूतना के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अभी आपको प्रश्न आएगा कि सुखदेव इतने शुद्ध भक्त थे, वो जानती थी, वो खेचरी राक्षसी थी। वो खेचरी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? कोई जानता है खेचरी का मतलब क्या होता है? जो तिनके को अभिमंत्रित करके उसको हवाई जहाज बनकर उस पर बैठकर उड़ सकती है, और नंबर टू जिसका आहार नवजात शिशु का खून है, नवजात शिशु के रक्त से ही वो अपने पेट भरती है, उसको खेचरी कहते हैं। ऐसी भयंकर राक्षस थी वो। भले आप एडल्ट लोगों को मारकर उसका मांस खाते होंगे तो एक बात है, लेकिन जो नए नए बच्चे पैदा हो गए उसका कोमल कोमल मांस वो खाती थी, उसका रक्त पीती थी वो। इतनी भयंकर राक्षसी थी। और सुखदेव जी को पता है जो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके सौंदर्य का वर्णन करते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? आचार्यगण बताते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की ओर जा रही है। राक्षसी क्यों ना हो, लेकिन जा कहाँ रही है? कृष्ण की ओर जा रही है, इसलिए वो गौरव करने योग्य है। इसलिए उसका सौंदर्य का वर्णन करते करते सुखदेव जी ने कई श्लोक कहे, और जो श्लोक का वर्णन करते जा रहे हैं वो ऐसा वर्णन है कि वो ऐसे उड़ते उड़ते चाल से जा रही थी, हाथ में कमल को ऐसे ऐसे खिलाते जा रही थी, यहां वहां चार पार देख रही थी। मतलब शालीन और कुलीन स्त्री का लक्षण नहीं दिखा रही है वो। अगर शालीन कुलीन स्त्री है तो सीधे जाएगी कोमल चरणों के साथ में, नाचते हुए रोड में नहीं चली जाएगी। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए, तरह तरह के क्या कहते हैं उसको, अदाएं पेश करते हुए जा रही है वो। तो ये क्लियर बात है कि वो शालीन कुलीन सुसंस्कृत स्त्री नहीं है, लेकिन जा रही है कृष्ण की ओर, इसलिए सुखदेव जी ने उसका सुंदर वर्णन किया है। फिर जब पूतना का वध हुआ तो ब्रजवासियों ने बहुत प्रयास से कृष्ण को उतारा उसके शरीर में से। तभी सभी ब्रजवासी औरतों ने आकर यशोदा को डांटा है कि तुम कैसी माता हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम बूढ़ी होने के बाद माता बनी हो, इसलिए बालक का संरक्षण कैसे किया जाए ये तुमको पता नहीं है, इसलिए तुमने अनजान स्त्री के हाथ में इस बालक को दे दिया। पहले वही सब स्त्रियां जब इस स्त्री को मतलब पुतना को सज धज कर आते हुए देख रहे हैं तो सब लोग उसको देखकर मोहित हो गए थे और सब लोग सोच रहे थे कहीं लक्ष्मी देवी तो नहीं आ रही है, वैकुंठ को छोड़कर इस हमारे कान्हा को वरदान देने के लिए तो नहीं आ रही है कमल हाथ में लेते हुए। तो सब लोग मोहित होकर उसके पीछे 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 जा रहे थे, वो आगे आगे नाचते हुए जा रहे थे, उसके पीछे सारी ब्रजवासी औरतें जा रही थी और सभी इन औरतों ने अपने सामने ही देखा था यशोदा को बालक देते हुए उसको, तभी किसी ने विरोध नहीं किया था कि क्यों दे रहे उसको। सबको लग रहा था कि हाँ साक्षात लक्ष्मी देवी आ रही है, कृष्ण को अपने गोद में लेकर आशीर्वाद देगी बहुत प्रेम से। और जब आतंक हो गया उसका विपरीत परिणाम हुआ तो वही श्रीआय आ रही है और देव यशोदा को डांट रही है, लेकिन प्रेम से डांट रही है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पुतना के आतंक से कृष्ण भगवान बच गए तो क्या हुआ, तुरंत वो उसको गौशाला ले गए। अभी देखिए जब भी कृष्ण पर कोई आतंक आया तो पहले उसको माता ने स्तनपान कराया है, उसके बाद में उसको गौशाला ले गए हैं। गौशाला में जाकर क्या करते हैं बताइए, जो जग रहे हैं वो बता दीजिए क्या करते हैं बताइए। बछड़ा गाय का होता है ना, या तो बछिया, उसकी पूंछ को पकड़ते हैं और पूंछ के जो बाल है उसको भगवान के अलग अलग अंगों में स्पर्श करते हैं और केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, सारे मंत्र बोलते हैं भगवान के दिव्य अंगों को स्पर्श करते करते। अरे भगवान को लेके जा रहे हैं, शुदा देवी गोद में लेके बैठी है, हाँ स्तनपान हो चुका है और भगवान के दिव्य अंगों को स्पर्श किया जा रहा है और ब्राह्मणों को बुलाया वो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते करते भगवान के श्री अंगों को स्पर्श कर रहे हैं और भगवान स्मित हास्य कर रहे हैं। किस स्मित हास्य कर रहे हैं, वो अपने नाम की महिमा देकर स्मित हास्य कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, देखो मेरे नाम की महिमा देखो, जब मुझ पर भी संकट आता है तो मेरे नाम से ही उसका उपाय किया जाता है, तो अपने नाम की महिमा खुद आंखों से देखकर मुस्कुरा रहे हैं भगवान, है ना। उसके बाद में ये पुतना का जो थोड़ा इतिहास समझना जरूरी है, पुतना कौन थी, अभी गर्ग संहिता आप पढ़ेंगे ना तो हर एक राक्षस का इतिहास दिया है, पहले कौन था, कैसे राक्षस बना और कैसे उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान में विलीन हो गई, या वो भगवत धाम चले गए वैकुंठ में बैठ वैकुंठ विमान में बैठकर, या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रेम भक्ति प्राप्त किया, फिर देवता के स्थान में प्रकट हो गए वहां पर जाके। तो पुतना ये बलि महाराज की बहन थी, उसका नाम था रत्नमाला। जब बलि महाराज का सब कुछ हरण करने के लिए, छल कपट करने के लिए जब भगवान वामन ने दर्शन दिया, तब वो दर्शन वो बाल स्वरूप था, इतना मोहक था, सुनहरे बाल, हाँ चमकता हुआ जनीव और हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में छतरी, मृगाजिन अनंत सूर्यों जैसा प्रकाशित मृगाजिन पहना हुआ था, पायरे में खड़ा हो हजारों सूर्यों का तेज वाला सुंदर चेहरा, ऐसे बटु वामन बैठकर बनकर भगवान प्रकट हुए तो रत्नमाला देख रही थी। बलि महाराज यज्ञ में बैठे थे, ऐसे ही खड़े हो गए, वैसे आदर से एकदम ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे स्वतः ही खड़े हो गए, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस खड़े हो गए वो, ही डिडंट स्टैंड ऐसा बाय प्लान, वो जो अपने आप ऐसे शरीर उठ गया उनका, इतना आदरपूर्व आदरपूर्ण व्यक्तित्व था वामन देव का। लेकिन साथ साथ एक बालक होने के नाते बहुत सुंदर आकर्षक भी थे वो, तो एक स्त्री होने के नाते एक मतलब जैसे कि जवान स्त्री नहीं बीच वाली स्त्री, जैसे कि माता बनने योग्य स्त्री, उसके मन में वात्सल्य पैदा हो गया और मन में ऐसा विचार आया काश ये मेरा बालक होता और मैं इसे स्तनपान कराती माता बनकर उसका। तो बालक के प्रति वात्सल्य उत्पन्न हुआ, स्तनपान करने की इच्छा हुई। उसके बाद वो उसको देखते रह गए, देखते रह गई, सबकी आंखों के सामने, उसके आंखों के सामने भी वो त्रिविक्रम बने, एक पैर से पूरा स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे पाताल लोक नाप लिए नरक लोक, और पूछ रहे हैं तीसरा कदम कहां रखूं, तुमने मुझे तीन कदम जमीन देने का मंत्र बोलकर जल छोड़ दिया था, संकल्प किया था, अभी तीसरा कदम कहां रखूं। अगर तीसरा कदम रखने के लिए जमीन नहीं है तो तुम्हें पाप लग जाएगा। तो ये जो घटना हुई ना, उसके बाद में बलि महाराज के सर पर पांव रखा गया, उनको एक तरह से, एक तो वरदान था वो, लेकिन उनको एक तरह से सबके, राक्षसों के कुल के, सारी पत्नियों के, मंत्रियों के, रिश्तेदारों के सामने और देवता शत्रुओं के सामने वरुण पास से बांधकर घसीटा गया, फिर सर पे पैर रख के नरक में भेजा गया। इतना अपमान किया गया तो रत्नमाला को सहन नहीं हुआ अपमान, वो मेरे प्रिय भाई का इतना अपमान इस बालक ने किया, काश मैं उसको जहर देकर मार दूं। एक विचार हुआ स्तनपान कराऊं, एक विचार हुआ जहर देकर इसका वध कर दूं। तो दोनों इच्छा पूर्ण करने के लिए वो पुतना बनकर जन्म लिया उसने, अगासुर बकासुर की बहन बनकर आई हो, और फिर स्तन में कालकूट विष धारण करके भगवान को पिलाने आई, मतलब माता बनकर दूध पिलाने आई लेकिन विष देकर मारने को भी आई, दोनों काम साथ करने आई। लेकिन भगवान ने क्या, आप जानते हैं ना, भगवान ने सारे पाप, सारे दुर्गुण, सारे दुष्कर्म जो है वो सब त्याग दिए, और केवल माता बनकर दूध पिलाने आई थी इसी को याद रखकर, उसी को प्रकाशित किया, उसी को ध्यान में रखते हुए उसको ऐसी मुक्ति दी, गौलोक धाम में यशोदा माता की सेविका बनी, वो धात्री बनी। तो ये रत्नमाला जो पुतना बनकर आई थी, ऐसे कहा गया कि 108 चिताएं रची गई, 108 चिता में 108 ग्वाल बालों ने अग्नि दिया और श्राद्ध कर्म भी किया उसका, पुतना का। उसके बाद में जब भगवान बालक को जन्म देने के बाद में जब सब रजांगनाएं देखने आई ना उनको, तो यशोदा कहती है दर्शन नहीं दूंगी आपको, आप सब लोगों की नजर लग जाए लाला को। तो वो कहते हैं कि हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, नजर लगाने के लिए भी नहीं आए हैं, हम तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, नजर उतारने का सामान लेकर आए हैं। तो ब्रज उपासना के आचार्यगण बताते हैं कि ब्रज उपासना क्या होती है। ब्रज उपासना में ब्रज के भक्त जो है वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं भगवान को, शुभ चिंतन करते हैं। मुझे अभी भी याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में, जैसे आज का दिन है ना, आगे अभिषेक हो रहा है, पीछे यज्ञ होते रहता है भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में, ऑस्पिशियस यज्ञ। उसमें मुझे बाबा ब्राह्मण के रूप में बुलाया था, मैंने बोला क्या सेवा करनी है, वो कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है, आपको भगवान को आशीर्वाद देना है। अरे बाप रे, बोला ये सेवा है आपकी, तो मैं बोला क्या आशीर्वाद दूं, बोले भगवान को दीर्घायु का आशीर्वाद दो, आरोग्य का आशीर्वाद दो अपनी माता पिता की अच्छी सेवा कर सके ऐसा आशीर्वाद दो। तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा, क्योंकि हमको आशीर्वाद मांगने की आदत है ना, लेकिन ब्रज उपासना में कैसे होता है, ब्रज उपासना में भगवान को कोई ब्रजवासी कोई मांगता ही नहीं है, भगवान को प्रेम देता है, भगवान को आशीर्वाद देता है। अभी भी ब्रज में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ बाल भाव में भगवान की सेवा करते, खास करके पुष्टि मार्ग के मंदिर में आप जाएंगे ना मंदिर में, तो वो दरवाजे पर ही उसका पुजारी बैठा रहता है, वो आपको वार्निंग देंगे, देखो हमारे लाला से कुछ मांगना नहीं, पैसे दो, ये दो, वो दो, ऐसा दो, वैसा दो, ये करो, वो करो, नहीं केवल आशीर्वाद देना है, तो आना तो मत आना हमारे मंदिर में। ये बड़ी श्रेष्ठ भाव की बात है। हम दुनिया के लोग जो है ना, उनको केवल चाहना 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 यही आता है, और चाहकर मांगना 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 यही आता है हमको, लेकिन भक्ति तो क्या है, देने के लिए है। भगवान भी अपने भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, उसके भूखे है वो। इसलिए ब्रज उपासना का रहस्य यह है कि ब्रज में भगवान को आप आशीर्वाद भले मत दो, लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं है वहां जाके, और अगर मांगते ही हैं तो क्या है, उनके लिए एक चीज मांगते हैं, वो क्या है, सेवा, आपकी सेवा मिले ताकि आपको हम प्रसन्न कर सकें। अभी कुछ समय बाकी है 20 मिनट के लिए, सोच रहा हूँ कौन सी कहानी बताऊं। एक काम करते हैं, अभी भगवान जो है वो वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, है ना, कंस के बारे में इतना वर्णन किया, उसका अंत भी करना चाहिए ना, कंस के जन्म के बारे में कथा बताई हमने शुरुआत में सुबह में, तो दिग्विजय का वर्णन किया, तो उसका अंत भी होना चाहिए, हाँ भगवान के 12 बजे के पहले उसका अंत होना चाहिए। तो तो अक्रूर जी उनको ले जा रहे हैं, अक्रूर जी को भगवान ने ब्रह्म रुद्र यानी कि वहां पर जो अक्रूर घाट है वहां पर अपने वैकुंठ का दर्शन दिया उन्होंने, और खुद जो है शेषशायी विष्णु बनकर बलराम जी शेष बने और भगवान विष्णु बने, वो दर्शन दिया। क्या बताया भगवान ने कि अभी वैकुंठ का ऐश्वर्य भाव आरंभ हो रहा है, ब्रज का माधुर्य भाव समाप्त हो रहा है, कृष्ण बलराम का रूप समाप्त होकर शेषशायी और विष्णु का ऐश्वर्य भाव ग्रहण करके दोनों भैया मथुरा में प्रवेश करेंगे। तो मथुरा प्रवेश करने के बाद में कृष्ण बलराम उतर जाते हैं। और बाय द वे आपको पता होना चाहिए कृष्ण बलराम के साथ में बहुत सारे ग्वाल बाल भी आए थे, कुछ देर बाद नंद बाबा भी आए थे, धनुर्यज्ञ है, हम भी देखेंगे उत्सव क्या चल रहा है मथुरा में। तो ग्वाल बाल कृष्ण बलराम के साथ में आए, कृष्ण बलराम रथ से उतर गए, अक्रूर जी को कहा कि आप थोड़ा सा जाइए अपने घर, हम थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं। तो सब ग्वाल बाल कृष्ण भगवान के साथ बलराम के साथ में मथुरा घूम रहे हैं। तो कैसे हैं, गांव के बच्चे हैं, गांव के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, और आप शहर में देखेंगे मथुरा नगरी में क्या सब लोग टिप टॉप घूम रहे हैं, एकदम शहर का वातावरण है। तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया कुछ अच्छे वस्त्र दिला दो, थोड़ा शर्म आ रही है गाँव के वस्त्र पहनते हुए शहर में घूमने के लिए। तो ये कह रहे तो उतने उतने रंगकर्मी आता है वहां पर। रंगकर्मी मतलब क्या है, एक प्रकार का धोबी, दो प्रकार के धोबी होते हैं मालूम है आपको, एक धोबी होता है कपड़े धोता है और एक धोबी कपड़े के रंग पक्के करता है, उसको रंगकर्मी कहते हैं। तो ये रंगकर्मी था। कंस के उत्सव वाले नए बहुत सारे अनंत कपड़े, नए कपड़े बिना यूज किए हुए, उसको रंग फिक्स करने का काम कर रहा था वो, तो वो सामने आ जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अरे वो वस्त्र हमको दे दो, हमारे बालकों को पहनने की इच्छा है। तो रंगकर्मी में गुस्सा आता है, अरे गांव के अनार बालकों, गंवार बालक, शर्म नहीं आती आपको, ये कंस के कपड़े हैं, राजा के कपड़े, क्या योग्यता है आपकी, चलो जाओ यहां से। तो भगवान कहते हैं अच्छा हमें जाने को कह रहे हैं, ऐसा एक ऐसा चौप है ना, चौप ऐसा गले पे लगा देते, मारते नहीं है केवल लगाते हैं ऐसे हाथ, उधर ही वो धराशायी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं बालकों पहन लो अपने अपने मर्जी के कपड़े पहन लो। बहुत सारे कपड़े थे स्वर्ग बाल बाल ने पहन लिए, लेकिन बेचारे कंस के माप के थे कपड़े ना वो, तो बालक पहन के घूम रहे, बोल रहे भैया कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान हाँ हम मथुरा में झाड़ू मारने नहीं आए, ये तो ऐसे चल रहे तो मथुरा साफ भी हो रही है, रास्ता भी साफ हो रहा है, कुछ ढंग से कपड़े बनवा दो जरा हमारे लिए, कुछ उसका क्या कहते हैं ऑल्टर किया जाए तो अच्छा है। ऐसे कृष्ण भगवान को बोल रही है तो दर्जी का दुकान सामने आता है। तो दर्जी को भगवान कहते हैं ये सब वस्त्रों को ऑल्टर करके दोगे क्या? दर्जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, भगवान के रूप से मोहित होकर कहता है क्यों नहीं क्या सेवा करूं। सब लोग अपने कपड़े उतारते हैं और कुछ ही समय में सारे ग्वाल बाल के माप के कपड़े बना देता है वो, एकदम फिटिंग, अभी रोड साफ नहीं हो रहा है चल रहे सब लोग। वे ग्वाल बाल बहुत मजेदार व्यक्ति हैं सब, वो कहते हैं अभी अच्छे वस्त्र हो गए, कुछ फूलों की माला हो जाए तो अच्छा है ना, फूल आने से मजा आता जरा। वो कैसे वन में जाते हैं ना, वन में रोज फूलों की माला पहनते ना, उनको आदत है, तो आज भी अच्छे वस्त्र मिल गए, इतने शहरी वस्त्र मिल गए तो माला भी होनी चाहिए। तो उतने में वो फूल वाला सामने आता है, क्या नाम क्या उसका, सुदामा, अच्छे अच्छे फूल की मालाएं लेकर बैठा हुआ है। कृष्ण भगवान कहते हैं हे सुदामा हम सबको माला दोगे क्या आप? बोले हाँ क्यों नहीं आपके लिए रखे हैं मैंने, एक्चुअली वो कंस के लिए रखे थे, लेकिन कृष्ण भगवान के प्रति इतनी भक्ति और प्रेम है, इंतजार कर रहे हैं, सुना है अक्रूर जी लेने गए हैं, वो आएंगे शायद कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा, अभी कह रहे हैं सब गैंग को लेकर बोल रहे हैं इनको सब माला देंगे क्या, सबको माला पहना देते हैं। ग्वाल बाल खुश, नए कपड़े फिर माप के कपड़े फिर माला पहन के अभी अच्छे लग रहे हैं। बोले कन्हैया एक कमी है थोड़ी सी, थोड़ा चंदन लग जाए ना थोड़ा तो आनंद आ जाएगा। आप जानते हैं ना ब्रजवासी लोग, आप अगर मिले होंगे नंदगांव के ब्रसाने के, उन्हें ना चंदन लगाए बिना ऐसे ऐसे किए बिना उनको आनंद लगता है ना, कपाल बहुत खाली खाली लगता है, भरा होना चाहिए चंदन से होना चाहिए, बस वही हमारा अलंकार है। भगवान को अर्पण करेंगे ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा देंगे, ऐसे उंगलियां बना देंगे और जाएंगे अपने काम पे। तो वो चंदन की मांग कर ही रहे हैं उतने में वहां पर कुब्जा आती है। देखो ऐसा सेटिंग कैसा है, देखा ना आपने, मानो ऐसा पूरा स्क्रिप्ट बना के रखा हुआ है। तो कुब्जा देवी जो है ना उसको तीन जगह बांक है, एक तो पीठ पर बड़ा ऐसा क्या कहते हैं उसको, बांक है, बांक पोक कहते हैं मराठी में उसको, हाँ हंच बैक। तो वो आ रही है अपना चंदन लेके जा रही है, उसके हाथ में बहुत बड़ा चंदन का पात्र है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे हमारे बालकों को चंदन लगाओगे क्या? जरूर लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी, मैं भी आपका इंतजार कर रही थी कि आप मथुरा आएंगे तो आपको चंदन लगाऊंगी। अभी देखो आप सब लोग ध्यान से सुनना, कुब्जा की मुलाकात भगवान कृष्ण बलराम से और ग्वाल बालों से ठीक कंस के महल के सामने हुई थी। इसका मतलब यह है कि वो कंस के लिए चंदन घिसने वाली औरत थी, कंस की विशेष सेवा करती थी, कंस ने उसको विशेष चंदन घिसने की सेवा दी थी। क्यों? क्योंकि वो कमजोर थी शरीर से। आप लोग ध्यान रखना, चंदन घिसने की सेवा कमजोर व्यक्ति को देनी चाहिए, क्योंकि वो कोमलता से धीरे धीरे घिसेगी ना तो बहुत महीन और मुलायम चंदन घिसेगा। कोई जोरदार ऐसा व्यक्ति आएगा और घिसेगा तो टुकड़े निकलेंगे उसके अंदर। इसलिए शास्त्र का नियम है कोमल और कमजोर व्यक्ति को चंदन घिसने का काम देना चाहिए, तो धीरे धीरे और प्रेम से घिसेगा तो बहुत मुलायम और महीन चंदन घिसेगा। इसलिए विशेष रूप से कुब्जा को वो काम दिया गया था, और कुब्जा के हाथ का चंदन कंस को बहुत प्रिय था, और रोज अपने हाथ से घिसकर वो कंस के लिए लेके जाया करती थी। अभी कंस के दरवाजे के सामने ही, महल के सामने ही खड़े होकर कृष्ण भगवान और बलराम जी को, ग्वाल बालों को चंदन लगाने का प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। हो सकता है अगर कंस कहीं अपने टेरेस पे आ गया तो देख लेगा कि मुझे, मेरे लिए बनाया गया चंदन मेरे दुश्मन के और दुश्मन के साझेदारों को दिया जा रहा है। लेकिन कुब्जा का आप देखिए कितना निर्भय थी वो, उसका धैर्य देखिए आप, एक अबला, एक अपंग होने के बावजूद भी कितना निर्भय थी वो। भगवान सामने खड़े हैं तो कंस की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। पहले कृष्ण बलराम को अलंकार पूरा लगा दिया चंदन, फिर सारे ग्वाल बालों को अलंकृत कर दिया चंदन से। तो भगवान ने क्या किया, कंस के महल के सामने उसके पैर के अंगूठे पर पैर रखा, अपनी दर्जनी उंगली ऐसे की मोल्ड फोल्ड फोल्ड की, उसके हनुवटी के नीचे रखी और उसको पैर से दबाया और ऐसे ऊपर उठाया, तो क्या हो गया, सुप्रा मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई उसकी। हमारे गिरिराज प्रभु है क्या इधर, किधर है? एक ही क्षण में बिना एनेस्थीसिया उसका बांक जो है वो ठीक कर दिया। और विशेष बात यह है कि जब वो बांक वाली थी और पहली मुलाकात कृष्ण से हुई तो कृष्ण ने क्या कहा, हे सुंदरी क्या तुम अपना चंदन लगा सकती हो क्या? अभी सुंदर नहीं बनी वो, लेकिन भगवान को पता था इसको सुंदरी में बनाने वाला हूं, और जैसे ही सेवा किया तुरंत सुंदर बना दिया उसको। तो सुंदर बनते ही भगवान के प्रति उसके मन में माधुर्य भाव पैदा हो गया, और भगवान की धोती खींचने लगी, चलो मेरे घर चलो, चलो मेरे घर चलो। लेकिन बाजू में बड़े भैया खड़े हैं, यहां पर सुंदर स्त्री है जो धोती खींच रही है। तो भगवान बड़े चतुरता से कहते हैं, बाद में आएंगे, चिंता मत करना, जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करेंगे और निश्चित ही आपके घर में आपको भेंट देंगे, विजिट करेंगे आपके लिए। फिर वहां से भगवान जो है, अभी देखो वस्त्र पहने हुए है, माला पहने हुए है, चंदन धारण किया हुआ है, और ऐसे जाते हैं सीधे धनुषशाला में, जहां पर धनुष का अभी यज्ञ होने का आयोजन किया जा रहा है। सीधे प्रवेश करते हैं, जाके सबके आंखों के सामने सब सैनिकों को हटा देते हैं, सैनिक उन पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, ऐसे हाथ से सबको धकाल गिरा देते हैं, और सबके आंखों के सामने आश्चर्यकारक रीति से 1,00,000 भार, कितना होता है एक भार, करीब करीब 100 किलो का होता है, 1,00,000 भार यानी 1 कोटि किलो का वजन का जो धनुष है, जो परशुराम जी ने कंस को भेंट में दिया था, जिस पर कंस ने उठाकर प्रत्यंचा लगाई थी, वो उसने भेंट दिया था उनको। और परशुराम ने कहा था, जिस दिन जो व्यक्ति आएगा और इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। तो बड़े इत्मीनान से संभाल के रखा था बंद कोठड़ी में, केवल साल में एक बार उसको निकालते थे, 350-400 मल्ल जो है उसको उठा नहीं पाते थे। वो 300-450 जो जितने मल्ल थे वो उसको धनुर्यज्ञ के लिए उठाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, कहते हैं उसमें 500 बैल लगाए गए थे और 400 मल्ल लगाए गए थे, फिर भी उनसे उठाने जा रहा था वो। वो सबको भगाकर भगवान ने बाएं हाथ से उसको उठाया और दाहिने हाथ से उसको तोड़ दिया पूरा। इतनी भयंकर ध्वनि हो गई कि ब्रह्मा जी को लगा स्वर्ग में ऊपर ब्रह्मा लोक में कि कहीं प्रलय का काल तो नहीं आया, टाइम तो नहीं हुआ है प्रलय का, प्रलय कैसे हो रहा है। वो धनुष की तनतकार इतनी बड़ी थी, और कंस ने बिल्कुल पहचान लिया, कि मेरे ही धनुष का आवाज आइए, तो और डरना चालू हो गया। बोला कोल्यापीड़ कहाँ है, उसको आगे करो, उसका आगे करो। फिर कोल्यापीड़ को कई हजारों लीटर मद्यपान किया गया और नशे में धुंध करके भगवान को माहुत ने उसका अंकुश मार मार के कृष्ण बलराम के ऊपर छोड़ दिया। कृष्ण भगवान आगे गए, उसकी सुंड पकड़ी और ऐसा उठा के पटक दिया, कोल्यापीड़ का उधर ही वध हो गया। उसके बाद में जाओ चाणूर मुष्टिक, जाओ आगे जाओ। भाई लंबी लंबी कथा है, समय बहुत कम है, फिर भी चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण बलराम ने मार दिया। वार्तालाप किया उनसे, कृष्ण बलराम कहते हम तो बालक हैं, आप तो पहाड़ जैसे योद्धा हो। तो कहते हैं चाणूर मुष्टिक, करे क्या आप योद्धा बालक हो, आप आपने अभी अभी हमारे आंखों के सामने कोल्यापीड़ जैसे भयंकर राक्षस को एक हाथ से उठाकर वध किया है, उसके दांत उखाड़कर हाथ में लेकर प्रवेश कर रहे हो, आप तो बड़े वीर पुरुष हो। स्त्रियां भी बोल रही है दिस इज नॉट अ गुड मैच, ये अन्याय हो रहा है, इतने कोमल कोमल बालकों के सामने पहाड़ पहाड़ जैसे मल्ल योद्धाओं को भेज रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर खड़े रहना भी अपराध है, यहाँ पर अपराध हो रहा है, उस अपराध को देखते रहना भी अपराध है, ऐसे स्त्रियाएं उस सभा में बोल रही है। उतने में चाणूर मुष्टिक को भगवान पटक के मार देते हैं। फिर कूट शल और तोशल या तोमर क्या तोशल, तीन और योद्धा आते हैं, उनको भी ये दोनों मार देते हैं। उसके बाद 5 मिनट बाकी है, उसके बाद सीधे भगवान जहां खड़े हैं, देखो विचार करो, ऐसा कि ऐसा कैसा गोल अखाड़ा है ना, ऐसे गोल अष्टकोनी ऐसा बड़ा अखाड़ा था कंस का, उसके बीच में कई सीढ़ियां हैं, उसके ऊपर एक सिंहासन है, उस पर कंस महाराज बैठे हुए हैं, इस तरफ मंत्रीगण बैठे हैं, इस तरफ प्रजाजन बैठे हैं, पुरुष स्त्रियां, इस तरफ नंदगांव के बालक और नंद बाबा बैठे हुए हैं, इस तरफ सब ऐसे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं विभाग से वर्गीकरण करते हुए, और सबके बीच में सर्वोच्च स्थान पर ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठे हुए हैं। तो जहां पर 5 योद्धाओं का मल्ल योद्धाओं का वध किया गया, वहां से भगवान छलांग लगाते हैं सीधे कंस के सामने। ऐसे कहा गया है कि जैसे भगवान उनके सामने खड़े हो गए, अब देख रहे ना धनुष का तोड़ दिया, ये कोल्यापीड़ जो अजय था उस कोल्यापीड़ को क्षण भर में मार दिया, पहाड़ जैसे योद्धाओं को ऐसे ऐसे चुटकी में मार दिया, तो यही मेरा काल है। उसके सामने जब खड़े हो गए भगवान छलांग लगा के, तो उसने तलवार निकाला लेकिन युद्ध नहीं किया, इतना भय से वो भयभीत हो गया था कि युद्ध नहीं किया। आपने पढ़ा है क्या भागवत में कि घनघोर युद्ध हुआ, आकाश में छलांग लगाया, मंडलाकार गोल गोल घूमे, फिर पृथ्वी पर गिरे, फिर पहाड़ पर गिरे, वो सब व्योमासुर अरिष्टासुर केशी इन सब का युद्ध का वर्णन आता है। लेकिन उनका नेता जिसने इन सारे भयंकर योद्धाओं को वश में किया था, परास्त किया था, नौकर बना के रखा था, वो सबने भगवान के साथ युद्ध किया, लेकिन कंस महाराज इतने भयभीत थे, कई दिनों से कई महीने से इतने भयभीत थे, इतने भयभीत थे, इतने भयभीत थे कि जब वो सामने आ गए तो तलवार तो निकाला, जिस तलवार की चमक को देखते हुए सारे देवता लोग कांपते थे, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, देखकर ही कांपते थे, वो तलवार निकाल के खड़े हो गए, उसके हाथ से तलवार ही गिर गई और भय से कांपने लगे, पसीना आया उसको। भगवान ने क्या किया, झट से जाकर उसके बाल पकड़े, बाल पकड़ के उसको घसीटा अपने आसन के नीचे, फिर सीढ़ियों से घसीट कर लेके आए और पूरे अखाड़े में घसीट कर उसको सबको दर्शन दिया, सबके सामने देखो कंस महाराज तुम्हारे मैं घसीट रहा हूं उसको, किसी की हिम्मत तो आके सेवा करो, उसकी रक्षा करो, सब नगरवासियों के सामने, सब मंत्रीगणों के सामने, नंद बाबा के सामने, सब ग्वाल बालों के सामने, सबके सामने कंस को घसीटा उन्होंने, और पूरा चक्र घसीटने के बाद में बीच में लेके आए, उसके छाती पर बैठे और एक मुक्का लगाया और कंस के प्राण निकल गए। बोलो कृष्ण भगवान की। उन्होंने ऊपर ही मुक्का क्यों नहीं मारा उसको, इतना टाइम पास करने की जरूरत क्या है, समय भी कम है बहुत। क्योंकि भगवान की माता देवकी के बाल कंस ने पकड़े थे, स्त्री के बाल पकड़ना उसका भयंकर अघोर घोर अपमान है, कभी भी स्त्री के बाल नहीं पकड़ने चाहिए, चाहे वो 4 साल की कन्या हो या 22 साल की जवान औरत हो या मध्यम वयीन अवस्था में हो या बूढ़ी अवस्था में हो, कभी भी स्त्री के बाल पकड़कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री के बाल पकड़ने वाले को भगवान दंड देते हैं, ये ध्यान रखना। तो अपनी माता का अपमान का भगवान ने उसके बाल खुले छोड़कर खींचकर घसीटकर उसका बदला लिया भगवान ने और फिर उसका वध किया। हमारी संस्कृति है, स्त्रियों के बाल जो है उनका शरीर का विशेष अंग है और उसका सम्मान करना सभी पुरुषों का कर्तव्य है और स्त्रियों का भी कर्तव्य है कि अपने ये एक अमूल्य बाल जो उनके शरीर का एक अमूल्य हिस्सा है कभी खुले नहीं छोड़ने चाहिए, उसको हमेशा बांध के रखने चाहिए और बांधे हुए बालों को ढक के रखने चाहिए। किसी पर पुरुष का उसका दर्शन नहीं होना चाहिए, केवल अपने पति को दर्शन होना चाहिए, बस। ये हमारी संस्कृति है, दिस इज अवर कल्चर। लेकिन जैसे ही अभी पश्चिमात्य लोगों का प्रभाव हमारे पर बढ़ रहा है, इसलिए बाल छोड़ना ये फैशन हो रही है। बड़ी बड़ी 50-60-70 साल की औरतें भी सफेद बालों पर छोड़ के चलते हैं, उसको भी शैम्पू करते हैं और उसको क्या इस्त्री करते हैं, उसको क्या मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, लेकिन खुले छोड़कर घूमते हैं। खुले जब छोड़ के घूमते हैं तो जो कहते हैं ना बैड ओमेन, अपशकुन, उनके बालों के माध्यम से मति में प्रवेश करता है। इसलिए स्त्रियों को बालों को खुला छोड़ना नहीं चाहिए और पुरुषों को उनको कभी बाल को पकड़कर अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया और पृथ्वी को भार से मुक्त कर दिया। पहले कंस के सारे साझेदारों का वध तो कर ही चुके थे, फिर आखिरी नेता का वध किया और कारागृह में गए और अपने माता पिता और दादाजी उग्रसेन इनको रिहा कर दिया उन्होंने। और रिहा करने के बाद में अपने माता पिता को विशेष तरह से मिलने गए वो, और जब मिलने गए तो उनके पैर छुए कृष्ण बलराम ने और क्या कहा उनसे, हे माता पिता, हमने आपकी कुछ सेवा नहीं की क्योंकि हम कहीं और थे, आपका कुछ सेवा नहीं कर पाए, अभी आपकी क्या आज्ञा है हमारे लिए, उसी का हम पालन करेंगे। तो देवकी वसुदेव उनके चरण जब छुआ लेते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। वो कहते हमने भी केवल माता का एक बार स्तनपान कराया, उसके बाद में तो कुछ हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, लालन पालन किया, कुछ संस्कार दिए, कुछ विधि किया, कुछ रिचुअल्स कुछ नहीं किया, अभी बहुत सारा हमारा काम बाकी आपके लिए करना है, अभी आप यहीं रहो। तो ये सुनकर नंद बाबा वहां फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि बाजू में खड़े थे। हमारे अस्पताल में नंदगांव के एक बाबा जी आए थे, ब्रजभूषण गोस्वामी, उसको प्रेम से सब लोग बिरजी बाबा कहते थे। हाँ, नंद बाबा के बड़े कर्रे, नंदगांव के बड़े कर्रे गोस्वामी थे वो, कर्रे ब्रजवासी, मतलब क्या पक्के एकदम भगवत प्रेम में लिप्त थे एकदम, लेकिन एकदम विक्षिप्त थे। वो हमारे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए आए थे भक्ति वेदांत में, और कई दिन तक रहे थे, कम से कम 40-50 दिन रहे, और उन्होंने उनका एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। तो वो जितने लोग उनको मिलने आते थे उनको कंस का वध का कहानी सुनाते थे, जो मैंने आपको सुनाया पूरा ना, इसका वध किया, फिर उसको आशीर्वाद दिया, फिर उसको चंदन लगा लिया, कूल्या पेड़, राक्षसों का वध किया, कंस का वध, ये पूरी कहानी सुनते थे। और जैसे ही कहानी इस मोड़ पे आती थी कि कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव का पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या किया जाए आपकी सेवा में, और वो कहते हैं कि आप यहीं रह जाओ, इस मोड़ पर वो फूट फूट कर रोते थे, आगे की कहानी बता नहीं पाते थे। और एक नहीं दो नहीं 50 बार मैंने उनको ये कहानी बताते हुए और इस मोड़ पर आकर रुक कर फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उसको, उनको। तो मैंने गुरुदेव को पूछा कि ये क्या राज है, हर बार जब माता पिता के पैर छूने का प्रसंग आता है ये ऐसे बालक की तरह फूट 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 पर रोते हैं। तो महाराज ने बताया, नंदगांव वासियों के लिए ये जो प्रसंग है जिसमें कृष्ण बलराम को देवकी वसुदेव कह रहे हैं कि आप यहीं रहो, अभी वापस मत जाना, ये उनके लिए सबसे बड़ा हृदयदाव प्रसंग है, हार्ट ब्रेकिंग इवेंट, इसलिए वो फूट फूट कर रोते हैं। और नंद बाबा भी फूट फूट कर रोए, वहां से उनके कदम जो है ना इतने भारी हो गए, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे नंदगांव की ओर जाने के लिए, निकल गए वहां से। वो उधर बीच में गांव आया, उधर रुक गए, उनका बहुत गौरव किया गया, राजा आ गए, राजा आ गए, वो गांव का नाम पड़ गया गौरव। गौरव गांव से वो निकल नहीं पा रहे थे, रो रहे थे बहुत, उनका सत्कार किया जा रहा है लेकिन वो खुद रो रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्यों रो रहे हैं। फिर बहुत लंबी कहानी कभी आगे बताएंगे आपको कि नंदगांव पहुंचने के बाद में क्या हुआ। तो इस तरह से भगवान अभी वादा कर चुके हैं माता पिता को, हम यही रहेंगे, और वहां से फिर वो उज्जैन गए हुए हैं, उसने 64 दिन में 64 कलाएं प्राप्त की है और बहुत सारी लीलाएं की है, वो कभी आराम से बैठकर आपको बताएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण आविर्भाव महामहोत्सव की जय, जय श्री राधे। श्याम